कतरा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दार्शनिक की जिनके विचारों ने, आप कह सकते हैं, नैतिकता की दुनिया में एक तरह की हलचल मचा दी, पीटर सिंगर।
हाँ बिल्कुल, पीटर सिंगर वो सिर्फ किताबी दार्शनिक नहीं है, उनके विचारों का असर असल दुनिया पर पड़ा है, आंदोलनों पर, लोग कैसे जीते हैं उस पर।
सही कहा, और इसीलिए शायद वो इतने, मतलब जितने माने जाते हैं उतनी उन पर सवाल भी उठते हैं।
बिल्कुल, तो आज हम कोशिश करेंगे उनकी सोच की गहराई, उसके फैलाव को समझने की।
हाँ तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पीटर सिंगर क्यों इतने अहम हैं और क्यों इनके कुछ विचार इतने विवादास्पद रहे हैं।
सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि सिंगर के विचार आए कब। ये वो समय था 60 और 70 का दशक।
हाँ, वो उथल पुथल वाला दौर।
बिल्कुल, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था, वियतनाम युद्ध का विरोध हो रहा था, पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं।
मतलब एक तरह से सवाल पूछने का माहौल था।
हाँ, स्थापित मान्यताओं पर सवाल, और फिलॉसफी में भी। देखिए, जॉन रॉल्स जैसे लोग न्याय पर नई तरह से सोच रहे थे, रेचल कार्सन की किताब आ चुकी थी साइलेंट स्प्रिंग,
पर्यावरण वाला आंदोलन।
हाँ, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकारों पर जोर, जानवरों के बारे में हमारी समझ बढ़ रही थी कि वो भी महसूस करते हैं, सोचते हैं। तो ये सब मिलकर एक जमीन तैयार कर रहा था सिंगर जैसे विचारों के लिए।
और उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था उसका भी जिक्र आता है अक्सर।
निश्चित रूप से, पीटर सिंगर, जन्म 1946, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। उनके माता पिता ऑस्ट्रिया से थे, वियना से, यहूदी थे।
अच्छा।
और 1938 में जब नाजियों ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया तो उन्हें भागना पड़ा। तो ये जो अनुभव था, मतलब पीड़ा और अन्याय को इतने करीब से देखना या सुनना, इसका असर उनकी नैतिकता की समझ पर जरूर पड़ा होगा।
उनकी परवरिश भी शायद इसी माहौल में हुई, तर्क और सामाजिक न्याय पर जोर।
हाँ, एक सेक्युलर सोचने विचारने वाले घर में। फिर उन्होंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से लॉ, हिस्ट्री और फिलॉसफी पढ़ी,
और फिर ऑक्सफोर्ड गए।
हाँ, और वहीं उनकी मुलाकात हुई उपयोगितावाद से। आर.एम. हेयर उनके गाइड थे, लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो ऑक्सफोर्ड में ही आया 1970 में।
वो लंच वाली कहानी।
हाँ हाँ, वही। अपने एक साथी छात्र रिचर्ड कीशान के साथ खाना खा रहे थे। सिंगर ने देखा कि कीशान मीट नहीं खा रहे, तो ऐसे ही पूछ लिया, भाई क्यों? कीशान ने कहा कि उन्हें जानवरों को जो कष्ट होता है उस पर नैतिक आपत्ति है। और ये बात सिंगर के लिए जैसे कोई बत्ती जल गई हो। पहली बार उन्होंने नॉन ह्यूमन जानवरों के प्रति हमारे बर्ताव पर इतनी गंभीरता से सोचा।
अरे वाह, मतलब एक छोटी सी बातचीत ने दिशा बदल दी।
बिल्कुल, और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने आगे चलकर एनिमल लिबरेशन किताब की शक्ल ली। फिर उनका अकादमिक करियर भी इसी दिशा में गया।
हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया, फिर अमेरिका गए।
जी,
प्रिंसटन में।
हाँ, मोनाश यूनिवर्सिटी में उन्होंने सेंटर फॉर ह्यूमन बायोएथिक्स शुरू किया, फिर 1999 में प्रिंसटन में प्रोफेसर बने। लेकिन वो अपॉइंटमेंट काफी विवादों में रहा।
क्यों, किस वजह से?
उनके कुछ विचारों की वजह से, खासतौर पर जो गंभीर रूप से विकलांग नवजात शिशु होते हैं, उनकी लाइफ क्वालिटी और इच्छा मृत्यु पर उनके जो तर्क थे उसको लेकर बहुत विरोध हुआ।
ओह, इस पर हम आगे बात करेंगे शायद।
हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे ये पता चलता है कि सिंगर सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रहते, उनके विचार सीधी टक्कर लेते हैं असल जिंदगी के मुश्किल सवालों से।
चलिए अब उनके मूल विचारों पर आते हैं, उनका जो दर्शन है उसका बेस क्या है?
देखिए, उनके दर्शन का कोर है वरीयता उपयोगितावाद, प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म।
ये क्या होता है आसान शब्दों में?
आसान शब्दों में मतलब नैतिक रूप से सही काम वो है जो उससे प्रभावित होने वाले सभी प्राणियों की वरीयताओं, प्रेफरेंसेस, मतलब उनकी इच्छाओं या हितों को ज्यादा से ज्यादा पूरा करे। सिर्फ सुख दुख नहीं, बल्कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, इस पर जोर है।
अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो सिद्धांत, हितों पर समान विचार वाला।
हाँ, वो बहुत बहुत क्रिटिकल है, हितों पर समान विचार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट्स। ये कहता है कि हमें सभी प्राणियों के एक जैसे हितों पर एक जैसा ध्यान देना चाहिए। मतलब ये मायने नहीं रखता कि वो किस प्रजाति का है, किस नस्ल का है या उसका लिंग क्या है।
तो अगर किसी जानवर को दर्द हो रहा है
तो उसका दर्द नैतिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी इंसान का दर्द।
दर्द तो दर्द है, उसकी पीड़ा को आप सिर्फ इसलिए कम नहीं आंक सकते कि वो जानवर है।
और इसी सोच से वो प्रजातिवाद वाली बात निकली, स्पीशीज़म। बिल्कुल, सिंगर ने इस शब्द को फेमस किया। उनका कहना था कि जैसे नस्लवाद या लिंगवाद गलत हैं, वैसे ही प्रजातिवाद भी गलत है। आप सिर्फ इसलिए किसी के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो आपकी प्रजाति का नहीं है। ये एक तरह का मनमाना भेदभाव है।
ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार था उस समय, और आज भी है शायद।
हाँ, इसने जानवरों के प्रति हमारे पूरे नजरिए पर ही सवाल खड़ा कर दिया, और उनकी जो सबसे मशहूर किताब है एनिमल लिबरेशन, वो इसी पर तो आधारित है।
हाँ, 1975 में आई थी वो।
उसे तो मॉडर्न एनिमल राइट्स मूवमेंट की, कह लीजिए, बाइबल माना जाता है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि नैतिकता का आधार तर्क करने की क्षमता या भाषा नहीं, बल्कि कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई दर्द महसूस कर सकता है तो उसके हितों का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
फैक्ट्री फार्मिंग और एनिमल टेस्टिंग पर भी उन्होंने काफी लिखा उसमें।
उनका एक निबंध है 1972 का, अकाल, संपन्नता और नैतिकता, और बाद में किताब आई द लाइफ यू कैन सेव। इसमें उनका तर्क ये है कि अगर हमारे बस में है कि हम कुछ बहुत बुरा होने से रोक सकें, जैसे किसी की भूख से मौत, और ऐसा करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी चीज कुर्बान न करनी पड़ रही हो, मतलब कोई नैतिक रूप से उतनी महत्वपूर्ण चीज,
हाँ,
तो हमें वो करना ही चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
इसी में वो तालाब में डूबते बच्चे वाला उदाहरण देते हैं।
हाँ हाँ, वो बहुत मशहूर उदाहरण है। वो पूछते हैं कि सोचिए आप कहीं जा रहे हैं, तालाब किनारे एक बच्चा डूब रहा है, क्या आप ये सोच के रुक जाएंगे कि अरे मेरे महंगे जूते खराब हो जाएंगे या कपड़े गंदे हो जाएंगे?
नहीं, शायद नहीं, कोई भी बचाने कूदे मां।
बिल्कुल। तो सिंगर कहते हैं, अगर हम यहां अपने जूते खराब होने की परवाह नहीं करते, तो फिर हम थोड़ी सी रकम दान करके, जो शायद हमारे लिए एक छोटी मोटी लग्जरी के बराबर हो, दूर देश में किसी बच्चे की जान बचाने से कैसे पीछे हट सकते हैं? दूरी से हमारी नैतिक जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती?
ये तो बहुत सीधी और चुभने वाली बात है।
हाँ, और इसी सोच ने कहीं ना कहीं प्रभावी परोपकारिता या इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म मूवमेंट को प्रेरित किया।
अच्छा, तो ये इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म क्या है?
ये मूवमेंट इस बात पर जोर देता है कि हमें सिर्फ दान नहीं देना चाहिए, बल्कि सोच समझकर, सबूतों के आधार पर ये देखना चाहिए कि हमारे दान का सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा, मतलब सबसे ज्यादा भलाई कहाँ हो सकती है। ये भावनाओं से ज्यादा तर्क पर आधारित है।
और सिंगर खुद भी ऐसा करते हैं?
हाँ, वो अपनी आय का एक काफी बड़ा हिस्सा, कुछ लोग कहते हैं 25%, कुछ कहते हैं 50% तक, ऐसी संस्थाओं को दान करते हैं जो सबसे प्रभावी तरीके से काम करती हैं।
तो कुल मिलाकर सिंगर ने फिलॉसफी को एकेडमिक सेमिनारों से बाहर निकालकर आम जिंदगी के सवालों से जोड़ा।
हाँ बिल्कुल, अप्लाइड एथिक्स यानी व्यवहारिक नैतिकता में उनका योगदान बहुत बड़ा है। गर्भपात, इच्छा मृत्यु, पर्यावरण, पशु अधिकार, गरीबी, इन सब पर उन्होंने अपने उपयोगितावादी नजरिए से बहस छेड़ी। उनकी किताब प्रैक्टिकल एथिक्स इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है।
भले ही उसके नतीजे हमें कई बार
हाँ असहज कर दें, क्योंकि वो तर्क को उसके लॉजिकल अंत तक ले जाते हैं।
अगर उनकी तुलना हम दूसरे दार्शनिकों से करें, जैसे मान लीजिए कांट से या अरस्तु से, तो क्या फर्क है?
देखिए, कांट जैसे लोग जो हैं वो नियमों और कर्तव्यों पर जोर देते हैं, मतलब कुछ काम अपने आप में सही या गलत है, परिणाम चाहे जो भी हो, जैसे झूठ बोलना गलत है, बस।
हाँ, डियोन्टोलॉजी कहते हैं इसे।
हाँ, बिल्कुल। जबकि सिंगर उपयोगितावादी होने के नाते परिणाम देखते हैं, कौन सा काम सबसे अच्छा नतीजा लाएगा, किससे ज्यादा से ज्यादा वरीयताएं पूरी होंगी या कम से कम पीड़ा होगी। और अरस्तु जो हैं वो चरित्र पर, सद्गुणों पर फोकस करते हैं, जबकि सिंगर के लिए मुख्य बात है एक्शन का नतीजा।
ठीक है, अब आते हैं उन विवादों पर जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था। उनकी आलोचना क्यों होती है इतनी?
सबसे तीखी आलोचना तो उनके उन विचारों पर होती है जो जीवन की शुरुआत और अंत से जुड़े हैं, खासकर गंभीर रूप से विकलांग नवजात शिशुओं के बारे में।
हाँ, आपने बताया था, क्या तर्क है उनका इस पर?
उनका कहना है कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीम मामलों में, जहां बच्चे के बचने की कोई उम्मीद न हो या उसकी जिंदगी सिर्फ असहनीय पीड़ा से भरी हो और उसके व्यक्ति यानी पर्सन बनने की कोई संभावना न हो, सिंगर व्यक्ति को चेतना, आत्म जागरूकता जैसी चीजों से जोड़ते हैं, तो ऐसे में माता पिता की सहमति से उसे बिना दर्द के मृत्यु देना शायद नैतिक रूप से जायज हो सकता है।
ओह, ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा विवादास्पद बात है।
हाँ, बहुत ज्यादा। इस पर उनकी भयानक आलोचना हुई, विकलांग अधिकार समूहों ने जबरदस्त विरोध किया, उन पर यूजेनिक्स यानी सुजननिकी का समर्थक होने का आरोप लगा।
आलोचकों का क्या कहना था?
उनका कहना था कि ये मानव जीवन का अवमूल्यन है, हर जीवन अपने आप में पवित्र है, उसका एक आंतरिक मूल्य है, और सिंगर की जो व्यक्ति की परिभाषा है वो बहुत खतरनाक रूप से संकीर्ण है, ये नवजात शिशुओं या मान लीजिए डिमेंशिया के मरीजों या गंभीर मानसिक विकलांगों को नैतिक दायरे से बाहर कर सकती है।
ये वाकई बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा है।
बिल्कुल, और इसी संदर्भ में उनकी माँ वाली बात भी आ जाती है।
हाँ, वो अल्जाइमर वाली बात।
हाँ, जब उनकी माँ अल्जाइमर से पीड़ित हुई तो वो उस अवस्था में पहुंच गई जहाँ सिंगर की अपनी परिभाषा के हिसाब से शायद वो व्यक्ति के गुण खो चुकी थी। लेकिन फिर भी सिंगर और उनकी बहन ने उनकी देखभाल पर काफी पैसा खर्च किया,
तो ये उनके अपने सिद्धांतों के खिलाफ गया।
माना कि ये निर्णय उनके प्रभावी परोपकारिता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता था कि पैसा वहां खर्च हो जहां सबसे ज्यादा भला हो। ये दिखाता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल जिंदगी की जो मुश्किलें हैं वो कैसे टकरा सकती हैं।
अच्छा, और वैश्विक गरीबी वाले विचारों की भी आलोचना होती है।
हाँ, उसे कहते हैं डिमांडिंगनेस ऑब्जेक्शन। मतलब ये कि सिंगर का जो नैतिक ढांचा है वो आम इंसान से बहुत ज्यादा मांग करता है
कि अपनी सारी एक्स्ट्रा कमाई दान कर दो।
हाँ, लगभग वैसा ही। आलोचक कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से या व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए। लोगों की अपनी जरूरतें होती हैं, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी खुशियां होती हैं।
सही बात है। ये सब तो गंभीर बातें हो गईं, कुछ हल्की फुल्की दिलचस्प बातें भी हैं सिंगर के बारे में।
हाँ, कुछ हैं। जैसे हमने सुना कि वो शाकाहारी कैसे बने, एक लंच पर हुई बातचीत से ये दिखाता है कि वो तर्क के लिए कितने खुले थे।
हाँ,
और ये भी कि वो अपनी सहायिका का इतना बड़ा हिस्सा दान करते हैं, ये कमिटमेंट दिखाता है। एक और बात, उन्होंने पियानो बजाना सीखा वयस्क होने के बाद।
अरे वाह।
हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि शुरू में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था।
क्यों?
क्योंकि उनके माता पिता 1950 के दशक में कुछ समय के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे थे।
तो ये सब पहलू भी हैं।
हाँ,
तो कुल मिलाकर अगर हम सिंगर की विरासत देखें, उनका प्रभाव, तो क्या कहेंगे?
देखिए, विरासत तो मिलीजुली है, प्रेरणा भी है, विवाद भी हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो आज के समय के सबसे प्रभावशाली नैतिक विचारकों में से एक हैं। आप पशु कल्याण कानूनों में बदलाव देखिए, प्रभावी परोपकारिता का एक ग्लोबल मूवमेंट बनना देखिए, बायोएथिक्स में जीवन की गुणवत्ता पर बढ़ता हुआ जोर देखिए, इन सब पर सिंगर के विचारों का असर है।
और आज भी वो प्रासंगिक हैं।
बहुत ज्यादा। फैक्ट्री फार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की नैतिकता, ग्लोबल हेल्थ, जीवन की शुरुआत और अंत के मुद्दे, एआई एथिक्स, दुनिया में बढ़ती असमानता, इन सारी बहसों के केंद्र में कहीं ना कहीं सिंगर के तर्क घूमते हैं। वो हमें लगातार, आप कह सकते हैं, झिझोड़ते रहते हैं कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में फिर से सोचें।
हाँ, वो दायरा कितना बड़ा होना चाहिए हमारी जिम्मेदारियों का, ये सवाल वो बार बार उठाते हैं।
बिल्कुल। क्या वो दायरा सिर्फ इंसानों तक है या जानवरों तक भी जाता है? सिर्फ हमारे आसपास के लोगों तक या दुनिया के दूसरे कोने में बैठे जरूरतमंदों तक भी? और शायद यही सवाल हम आज सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। इस कनेक्टेड दुनिया में जहां हम मीलों दूर बैठे लोगों की तकलीफ जान सकते हैं, जहां हमारे हर काम का असर पर्यावरण और जानवरों पर पड़ रहा है, वहां ये हितों पर समान विचार का सिद्धांत हमसे क्या चाहता है? कहां तक फैलनी चाहिए हमारी नैतिक सोच की सीमा?
सोचने वाली बात है। पीटर सिंगर हमें इसी मुश्किल लेकिन जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।